وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن عظیم شان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سرزن آیت آف دا قرآن وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَ کہ انسان گناہ اعلانیہ کرے یا چھپ کے کرے چھو چھپا کے گناہ کرے یا دکھا کے گناہ کرے علم کے ساتھ گناہ کرے یا بغیر لا علمی میں گناہ کرے ارادے سے گناہ کرے یا بغیر ارادے کے گناہ کرے سارے گناہوں کو چھوڑنا ہے سارے گناہوں کو چھوڑنا ہے تمام گناہ چاہے انسان اعلانیہ کرے یا چھپ کے کرے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی جو مثال ہے آج سمجھنا آسان ہے یہ کینسر کی طرح ہوتا ہے اگر کینسر کو آپ دیکھیں کینسر سیل ہوتا ہے آپ اس کا علاج نہ کریں ٹریٹمنٹ نہ کریں وہ جسم میں پھیلتا چلا جائے گا اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان مر جاتا ہے اس کو جسمانی موت آ جاتی ہے بالکل یہی حال ہے گناہ کا وہ کینسر کی طرح ہے اسپرچل کینسر شروع کے اندر تھوڑے ہوتے ہیں چھوڑنا آسان ہوتے ہیں علاج کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جب یہ انسان عادی بن جاتا ہے نا گناہوں کا تو ایک سے دو دو سے چار یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اگر علاج نہیں کرایا ٹریٹمنٹ نہیں کرایا تو انسان پھر روحانی موت کا شکار ہو جاتا ہے روح کو موت آ جاتی ہے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہے یہ ایک بچھو کی طرح ہوتا ہے اسکارپین چاہے چھوٹا ہو اسکارپین چاہے بڑا ہو آپ اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاتے ہاتھ نہیں لگاتے کیوں کیونکہ نقصان پہنچائے گا تکلیف کرے گا تو گناہوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بچھو کی طرح ہوتا ہے کہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں نقصان ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر بے برکتی آتی ہے تکلیف آتی ہے پریشانیاں آتی ہیں یہ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیں کہ گناہ کی جو مثال ہے نا وہ ایک آگ کا انگارہ ہوتا ہے ویسی ہے اب آگ کا انگارہ ہو کول آگ فلیم آپ اس کی طرف چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹی آگ ہو اب اس انگارے کو ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ جل جائے گا میرا ہاتھ میں تکلیف ہوگی تو گناہ بھی یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے بلکہ جیسا بھی ہے انگارہ ہے جس طرح آگ کے انگارے کو ہاتھ میں نہیں اٹھاتے ہمیں گناہوں کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے اس سے بچنا چاہیے نقصان کا سبب بنتا ہے ایک صحابی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے اور بہت خوبصورت سوال پوچھا ہمارے لیے معاملہ بہت آسان کر دیا پوچھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں کیا خوبصورت سوال پوچھے ہماری تو سوالات بھی مختلف ہوتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھیں کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہوں میں کیا کروں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس کہ گناہ کو چھوڑ دو حرام کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. جب جسم ایسا ہو نا کہ گناہ سرزد نہ ہو, نہ آنکھوں سے, نہ زبان سے, نہ کان سے, نہ کوئی شرمگاہ سے, نہ دل میں. جب انسان کا سر سے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک ایسا صاف اور شفاف جسم ہو جاتا ہے کہ گناہ نہیں ہو رہے ہوتے, تو پھر اس کے بعد لمبی لمبی عبادتوں کی ضرورت نہیں, لمبی لمبی راتوں کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لمبے لمبے مراقبے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بلکہ گناہوں سے جس طرح انسان بچ گیا, اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلدی اپنا وصل عطا فرما دیتا, کیونکہ یہ گناہوں سے بچتا ہے. گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے نا, اس سے بچنا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب نصیب ہو جاتا ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے عام بندہ جس طرح ہم لوگ ہیں, عام مسلمان ہیں, اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں, ان کو اولیاء کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. ہم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ ہم لوگ نیکی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم نیکی نہیں کرتے, اور جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر کبھی ہم پہ پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے سینے کو نور سے بھر دیتا ہے, ہمارے دلوں میں بھی نور آتا ہے, دلوں کے اندر انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے, اچھی کیفیت بھی ہوتی ہے, عبادت میں مزہ بھی آتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابھی نور آیا تھا دل کے اندر, پھر اگلے ہی لمحے ہم نے کچھ نافرمانی, کوئی گناہ کر دیا, مثال کے طور پہ آنکھوں نے کچھ دیکھ لیا جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا, زبان نے کچھ بول دیا, کچھ جھوٹ بول دیا, غیبت کر دی, دل دکھا دیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم نے شرمگاہوں سے اپنے کو گناہ کر دیا, سوچ میں گناہ کر رہے ہیں. تو ابھی نور تو آیا تھا, لیکن ابھی گناہ کی وجہ سے وہ جو نور آیا, جو ملا, وہ ضائع ہو گیا, آتے ہی چلا جاتا ہے. تو ہمارا جو حال ہے نا, وہ یہی ہے. یہ اتنا سا فرق ہے ہم میں اور اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء, جو دوست ہیں, جو مقرب بندے ہیں, اور اتنا سا فرق ہے کہ نور تو ہمارے اندر بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے, لیکن ہم اس نور کی حفاظت نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں, ہم ہفتے میں علم بھی پڑھتے ہیں, دین کا علم بھی کچھ پڑھ رہے ہیں, ہم ایک دفعہ اللہ والوں کی مجلس میں بھی آ جاتے ہیں, ہفتے میں آ گئے, ہم بزرگوں کے بیانات بھی سن لیتے ہیں, ان کی کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم ذکر بھی کر لیتے ہیں, تلاوت بھی کر لیتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, لیکن اگلے ہی دن وہ سارا نور چلا جاتا ہے, اس نور کو سنبھال نہیں پاتے. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن بھی نور کو نہیں سنبھال پاتے. یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ ابھی نماز پڑھی مسجد کے اندر, پھر باہر گئے, اب نگاہیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں, یعنی چند لمحوں کے لیے بھی ہم نور کو نہیں سنبھال پائے. لہذا نور تو آتا ہے, لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اس کو اگر ہم محفوظ کر لیں تو پھر ہر لمحے انسان کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے, انسان اللہ تعالیٰ کے قریب آ رہا ہوتا ہے, پھر اتنی لمبی لمبی مجاہدات کی ضرورت نہیں ہوتی, رات بھر کی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی, بس نور کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے, ہمارے ساتھ جو ہے نا دو دشمن ہیں جو ہمیں گناہ کرواتا ہے, ہر انسان کے ساتھ دو دشمن ہیں, ہمارا نفس ایک دشمن ہے, اور یہ نفس ایسا دشمن ہے, اندر کا دشمن ہے, اور ہمارے گناہوں کو مزین کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے. اٹس بیوٹیفائنگ آور سنس. ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں اپنے عیب تو نظر نہیں آتے, لیکن اوروں کے عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں, یہ نفس کی شرارت ہوتی ہے. कि हमें अपने ऐप दिखाना ही नहीं चाहता और हम बायनोक्यूलर्स लगा के और लोगों की ऐपों को देख रहे होते हैं, अपनी तरफ तवज्जो ही नहीं होती, मुजयन करता है गुनाहों को। और शैतान के भी यही हाथ है। कुरान में अल्लाह ताला शैतान के बारे में फरमाता है कि वह कैदना लहुम कुराना फज़यनु लहुम, कि एक साथी होता है शैतान जो इंसान के साथ है, फज़यनु लहुम मुजयन करता है लोगों के लिए, उनके गुनाहों को मुजयन कर देता है और वो मुजयन कर करके आमाल को पेश कर रहा होता है। अब इंसान गुनाह कर भी रहा होता है लेकिन उसको पता भी नहीं होता, मालूम ही नहीं होता कि मैंने कोई गुनाह किया, कितने गुनाह हो जाते हैं। और अगर कभी गुनाह का मालूम होना कि मैंने कोई गुनाह किया है तो हम उसको फिर हल्का समझते हैं कि ये तो छोटा सा था, मामूली सा था, हल्का सा गुनाह था। अच्छा, एक और शरारत शैतान की कि ये तो मैंने आखिरी दफा गुनाह किया। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते ना तो वी गेट दिस अलॉट, सर ये आखिरी दफा, एक दफा तो हो सकता है ना, उसके बाद हम तौबा कर लेंगे। अब ये जो आखिरी दफा का गुनाह है ना, ये शैतान की इतनी बड़ी चाल होती है, इतनी बड़ी चाल होती है। वो आखिरी दफा के चक्कर में शैतान कितने गुनाह करवा देता। आखिरी दफा, आखिरी दफा। तो एक तरफ तो देखे हम मुराकबा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह वालों की सोबत में आते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो अच्छी इबादत कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारी निगाहें पाक नहीं है, हमारी जबानें साफ नहीं है, हमारी शर्मगाहें जो हैं वो पाक नहीं है, तो ये जो बदएहतियाती है ना, बेएहतियाती, ये रुकावट बनेगी। दिस इज एन ऑब्स्टिकल। इन रुकावटों के साथ हम कभी अल्लाह ताला के कुर्ब तक नहीं पहुंच सकते, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम अल्लाह ताला के करीब आना चाहते हैं ना, ये रुकावटें हैं। ये सोचें कि गुनाह एक रस्सी की तरह होती है, ये रस्सी खींच रही होती है। हम अल्लाह ताला की तरफ जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला के बनना चाहते हैं। जितने गुनाह में इंसान फंसा होता है ना, वो एक एक रस्सी की मानिंद है, वो खींच रहे होते हैं, हमें मंजिल तक पहुंचने नहीं देते। इंसान पर रास्ते के अंदर ही रह जाता है, वासिल नहीं हो पाता, करीब नहीं आ पाता, मोहब्बत को चख नहीं पाता। और अगर आप गुनाहों को छोड़ने की हिम्मत करें, मेहनत करें, ये कोई आसान काम भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कहा मैं गुनाह को छोड़ दूंगा, मैं गीबत नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, और कल सुबह हुई तो फिर आप गुनाह खत्म हो गया। ये आदत बनी है ना, अब 20 साल से इंसान की गुनाह झूठ बोलने की आदत है, तो फौरन नहीं हो पाती, फौरन नहीं छूट पाती। इसका तभी इंसान को पता चलता है कि जब इंसान मैदान में आए और फिर गुनाह को छोड़ने की मेहनत शुरू करे, तब पता चलता है कितना मुश्किल काम है। यही वजह है कि हमारे एक बुजुर्ग थे, फरमाते थे, उन्होंने किसी को कहा कि झूठ नहीं बोलो, बस इस पर प्रैक्टिस करो कि झूठ नहीं बोलो। वो कहते हैं कि मैंने 40 साल कोशिश करी, फिर जाके मुझे वो हालत हुई कि मैं किसी की परवाह नहीं करता था, ना मलामत की, ना निदामत की, बस जो होता था मैं सच बात बोलता था। 40 साल मेहनत करी, क्योंकि आदत बनी होती है ना, रवानी में इंसान बोल देते हैं। अब आदत को तो एक रात में नहीं बदल सकते, तो गुनाहों को छोड़ना, ये जब इंसान मैदान में आता है ना, मेहनत करना शुरू करता है, तब पता चलता है कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक हमारा मकसद जिंदगी है, मकसद बंदगी है, कि मेहनत का मैदान है। और ऐसा मेहनत का मैदान है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, वह जरूर ظاہر الاسم و باطن, کہ اپنے تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے, ہمیں زیرو گناہ کے لیے ایم کرنا ہے. دیکھیں جب انسان محنت نہیں کرتا تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے, محنت نہیں کرنا تو لگتا ہے اور آسان کام ہے. حالانکہ جب سوچ شروع کرتا ہے نا محنت کرنا, تو پتہ چلتا ہے کہ میرے دل میں تو یہاں بھی ایک دھبا ہے, میں تو یہ بھی گناہ کرتا ہوں, میں تو یہ بھی گناہ سوچتا ہوں, اتنے دھبے ہیں. پھر انسان بینڈیجز لگا رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں بھی بینڈیج لگانی ہے, یہاں بھی بینڈیج لگانی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے. اور پھر اف اے پرسن از ریئلی آنےسٹ وتھ دیم سیلفز, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں, میں تو آنکھیں بھی میری گناہ میں ملوث ہیں, زبان بھی پاک نہیں ہے, میں صبح سے رات تک پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا ہوں. پھر انسان کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ اچھی بات ہے, یہ احساس آنا بھی بڑی اچھی بات ہے. تو گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہے, ایک محنت کرنی ہے. اسی کا نام مجاہدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے قریب آنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے, ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے, تو ہم اس کو پھر اپنی طرف لے کے آتے ہیں, اور کئی طریقے سے لے کے آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ہم ایک راستے سے اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہیں گے, اللہ تعالیٰ کئی راستوں سے ہمیں اپنی طرف کھینچیں گے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو یہ مجاہدہ ہر بندے کو کرنا ہے گناہ کو چھوڑنے کا. اور ہمارا جو آنے کا بیٹھنے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یاد دہانی ہو جائے. دیکھیں بات سادہ سی ہے لیکن بار بار ریپیٹ ہوتی ہے نا, تو پھر دل میں اترتی ہے. روٹی ہم لوگ روزانہ کھاتے ہیں, کسی کا پیٹ بھرتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اب تو میں تھک گیا روٹی نہیں کھاؤں گا, زندگی بھر روٹی کھاتے رہیں گے, ہر دن روٹی کھائیں گے. تو یہ جو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں یہ بھی ایسی ہیں کہ انسان بار بار سنتا ہے, بار بار اس کا فائدہ ہوتا ہے, بار بار فائدہ ہوتا ہے, پھر دل میں بات اتر جاتی ہے. تو جو بنیادی نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنا ہے. اور انسان کو اپنی حقیقت خود معلوم ہوتی ہے, انسان اپنے دل میں جھانک کے دیکھے, دل وہ گواہ ہے, رشوت قبول نہیں کرتا. ہم اور لوگوں کو تو باتیں کر کے بتا دیں گے, لیکن دل جانتا ہے کہ ہمارے کتنے پانی کے اندر ہے, ہماری کیا حالت ہے, رشوت نہیں قبول کرتا. اگر دیکھیں صرف ظاہر میں ہمارا معاملہ ہوتا ہے نا نیک بننا, ہم امامہ جبہ پہن لیتے, ہم ہاتھ میں تسبیح لے لیتے اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو بہت نیک ہے, بہت نیک ہے, لوگوں کی نظر میں ہم نیک ہو جاتے, لیکن ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو علیمم بذات الصدور ہے, وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی, جو دلوں کے راز ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر ہم صرف یہ ظاہر پہ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھیں گے کہ دلوں میں تو میل نہیں ہے, دلوں میں تو نجاست نہیں ہے. اس نجاست کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مقبول نہیں بن سکتے, مقبول بننے کے لیے وہ نجاست کو ہٹانا پڑے گا. ہمارے اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک بزرگ ہیں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک بہت خوبصورت اصطلاح یوز کری ہے اپنے مکتوبات شریف میں, اس کو کہتے ہیں, پہلی دفعہ انہوں نے اس کا استعمال کیا, دیدے قصور. دیدے قصور کہتے ہیں کہ اپنے قصوروں کا, اپنے عیبوں کا, گناہوں کا دید ہو جانا, یعنی اپنے گناہ نظر آنے لگنا. کئی دفعہ انسان गुनाह कर रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं होता, मालूम नहीं होता, नजर नहीं आ रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूं। तो दीदे कसूर अगर किसी को नसीब हो जाए ये बहुत अच्छी नेमत है। बल्कि एक रिवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी से खैर का इरादा फरमाता है तो अल्लाह ताला उसके ऐबों को उसके ऊपर खोल देता है। यही वजह है कि एक शख्स था, वो किसी अल्लाह वालों की सोबत में आया और कहने लगे, हजरत मैं जितने गुनाह छोड़ता हूं उतने और गुनाह मेरे अंदर पैदा हो जाते हैं, मुझे नजर आना शुरू हो जाता है। मैं जितने गुनाह छोड़ता हूं उतने और गुनाह मुझे अपने अंदर आना शुरू नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो फरमाया कि हाँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत की नजर है, खैर का इरादा है कि इंसान को दीदे कसूर की नेमत नसीब हो जाती है कि कम अज कम पता चलता। वरना तो इंसान जाहिर में तो बड़ा दोस्त बना होता है अल्लाह ताला का, नेक बना होता है, और फिर जब खलवत होती है, तन्हाई होती है, तो फिर वो काम कर रहे होते हैं जो किसी ईमान वाले के नहीं होते, अल्लाह ताला के दुश्मनों वाले काम कर रहे होते हैं, एक उम्मती वाले काम नहीं कर रहे होते। फिर तो ये जो दो रंगी है ना, इसको खत्म करना कि हम खलवत में जलवत में कुछ होते हैं और खलवत में कुछ होते हैं। जब तक हम इस दो रंगी को खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक अल्लाह ताला क्या कबूलियत नहीं मिल सकते, वो महबूबियत नहीं मिल सकते। अब बात ये रह गई कि गई गुनाह छोड़ना है तो कैसे छोड़े, प्रैक्टिकल भी तो थोड़ा सा हम देखें कि गुनाह अगर छोड़ना है तो वही कैसे छोड़े। तो इसका एक थंब रूल याद रखें कि जब किसी चीज का नुकसान का पक्का यकीन हो ना, किसी भी चीज के नुकसान का पक्का यकीन हो, तो फिर उसको छोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए दुनिया के अंदर एक स्नेक है, आप स्नेक को देखें तो बहुत खूबसूरत जानवर है, उसके स्केल्स होते हैं, उसका टेक्सचर आप फील करें, उसका कलर बड़ा अनोखा होता है, उसको देखने में एक शान होती है। आप कहें कि देखो इतना अच्छा जानवर है, इसको जरा सॉफ्ट भी है, कलर भी देखो कितना अच्छा है, जरा हाथ तो लगा के देखो, इसको हाथ से ला के देखो, टच करके देखो, दुमी से पकड़ लो, उस पर पैटर्न अच्छे बने हुए हैं। लेकिन कोई भी अकलमंद इंसान उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, उसको पता है कि ये देखने में तो बहुत अच्छा जानवर है, बहुत खुशनुमा जानवर है, लेकिन अगर मैंने हाथ भी लगाया इसने मुझे डसना है और मुझे जिस्मानी मौत आ जाएगी। उसको इस बात का यकीन होता है। हमारी जो कमी है ना, हमें यकीन नहीं है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उस पे परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, हर अमल का जजा जजा होती है, सजा मिलती है, हमें इसका यकीन नहीं है। चूंकि यकीन नहीं है तो हम गुनाह कर देते हैं। जिस दिन यकीन दिल में पैदा हो जाएगा इंसान गुनाह की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाएगा। आप देखें कि यहां इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं, लिखा होता है 1000 किलोवाट वायर, 125 किलोवाट वायर, डेंजर वार्निंग, डोंट कम नियर। इंसान को यकीन होता है कि अगर मैंने हाथ लगाया तो मुझे मौत आ जाएगी, हम उसके करीब भी नहीं जाते। डेंजर साइन होता है, फिर एक फेंस होती है, फिर एक गार्डन होता है, फिर एक इंक्लोजर होता है, वो आपको करीब भी नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि यकीन दिल में उतरा हुआ है कि मुझे हाथ भी नहीं लगाना, हाथ लगाया तो मैं मुझे जिस्मानी मौत नसीब हो जाएगी। लेकिन गुनाह के बारे में यकीन नहीं है। लिहाज हम गुनाह करते चले जाते हैं। हमारा दुनिया के मामले में देखें कितना यकीन बना हुआ है, हम चांस भी नहीं लेते, कोई ऐसी चीज जो खतरे वाली है उसका चांस भी नहीं लेते। यकीन तो दूर की बात, हम उसका चांस भी नहीं। एक जार है, अगर उसमें से 100 कैंडीज है, 100 टॉफीज है, और मैं कहूं कि इनमें से 100 में से 99 बिल्कुल पाक है, सही है, ओनली वन हैज पॉइजन इन इट, और मैं आपको जार दूं कि भाई आपकी मैंने दावत करी, आप जरा एक तो लें चखें, बस 100 में से एक में कुछ जहर है, आप इसको चखें खाएं, कोई भी नहीं लेगा। हालांकि 1% चांस है कि वो जहर वाली ले ले, लेकिन हम 1% चांस भी नहीं लेना चाहते दुनिया के अंदर। तो गुनाह के मामले में भी अल्लाह ताला चाहते हैं कि 100% छोड़ना पड़ेगा, 100%। और ये यकीन की कमी है। एक नौजवान था, वो किसी अल्लाह वालों की खिदमत में आया, क्योंकि हजरत मेरे लिए दुआ करें, मैं नजर से गुनाह करता हूं, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई गेज, नजर काबू में नहीं है। तो हजरत ने फरमाया कि अच्छा ऐसा करो कि मेरा एक काम करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इस मामले का। हजरत बताएं क्या काम करना है कि अच्छा, वो शहर के दूसरे बाजार के दूसरे किनारे में मेरे एक दोस्त रहते हैं, उनको मुझे कुछ पहुंचाना है, तुम दे दोगे? कहा हाँ आप मुझे दे। तो उन्होंने एक कप के अंदर बोल में दूध डाला और कहा कि दूध का प्याला है ये, उनको जरा जाके पहुंचा के आ जाओ, बाजार के दूसरी साइड पे रहते हैं। मैंने कहा तो कोई बात नहीं है, मैं अभी करके आया। अच्छा भैया एक बात है कि दूध गिराना नहीं है। ठीक है नहीं गिराऊंगा। देखो मैंने कहा दूध गिराना नहीं है और मैं अपने तुम्हारे साथ दो बंदे भेज रहा हूं, दूध गिरना नहीं चाहिए, अगर दूध गिरेगा तो ये जो दो बंदे हैं ना ये तुम्हारी पिटाई करेंगे। अब वो सीरियस हो गया, ठीक है। तो उन्होंने दूध का प्याला दिया और दूध लब लब ऊपर तक भरा हुआ और दो मजबूत बंदों को भी साथ कर दिया कि जाओ। देखे ना कि दोनों बंदे हैं कि रामन का तबीन, तो वो भी सीरियस था। वो खैर दूध लेके गया तो फिर वापस आए तो उन्होंने पूछा कि बताओ कि दूध पहुंचा दिया? उसने कहा। अच्छा ये बताओ कि जाते वक्त तुमने कितनी लोगों को देखा बाजार के अंदर, कितनी औरतों पे शक्ल डाली, कितनी औरतों की शक्ल पे नजर डाली? कहते हजरत मैं तो मेरे सारी तवज्जो दूध पे थी, आपने जो दो बंदे मेरे साथ कर दिए थे मैं तो नजर उठा के भी नहीं देख सकता था, मैं तो बस इसी फिक्र में था कि यहां से ना गिरे या यहां से ना गिरे, इधर उधर की फिक्र थी मुझे, मैंने तो नजर उठा के भी नहीं देखी। फरमाया कि हाँ यही सबक देना चाहता था कि तुम्हें नुकसान का यकीन था कि अगर दूध यहां से थोड़ा सा छलका ना तो तुम्हें भी सजा पड़े, लोग बंदे हैं पिटाई कर देंगे। तो जिस तरीके से तुम्हें इस बात का यकीन था कि अगर मेरा दूध छलका यानी गिरा तो मुझे मेरी पिटाई हो जाएगी, अल्लाह वालों को इसी चीज का यकीन होता है कि अगर उनका जो दिल का प्याला है वो छलक गया तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर सजा होती है। अल्लाह वालों को इस बात का यकीन होता है कि अगर गुनाह हमारा छलक गया ना तो फिर उसकी सजा होती है, उनको इस बात का यकीन है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी बात लिखी है, फरमाते हैं कि आलिम वो शख्स होता है कि जिसके दिल में गुनाहों का खौफ उतर जाए, اور پھر اس گناہوں کی خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے. گناہ کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے اوپر کھل جاتے ہیں پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے. اس شخص کو عالم کہتے ہیں. ہمارے اپنے حضرت جی واقعہ اکثر ہمیں سناتے ہیں. امریکہ کے اندر ایک ہارٹ سرجن تھے, تو ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو دیکھا کہ وہ جو ہارٹ سرجن ہے وہ بہت ہی احتیاط سے کھانا کھا رہے تھے. اب وہ جو چربی تھی نا اس کو نہیں کھا رہے تھے, فیٹ. ہم تو کھاتے ہیں نا سب کچھ ساتھ کھا لیتے ہیں, چربی بوٹی چکن سالن سب ساتھ, لیکن وہ بہت احتیاط سے چربی نہیں کھا رہے تھے. تو پوچھا کہ بھائی آپ اتنا محتاط طریقے سے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں, ہارٹ ڈاکٹر ہوں, میرے روزانہ کا تجربہ ہے کہ یہ جو چربی کھاتے ہیں تو اس سے جو آرٹریز ہوتی ہیں وہ کلاگ ہو جاتی ہیں, اور میں روزانہ لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان کو ٹریٹ کرتا ہوں کہ کسی کی کلاگ آرٹریز ہوتی ہیں, ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں لوگوں کو. تو مجھے کیونکہ تجربہ ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے میں اس چیز سے بچتا ہوں, میں نہیں کھاتا. اس کو کہتے ہیں علم, کہ ان کو علم تھا لہذا اس کا نقصان کا علم تھا لہذا پھر وہ بچتے تھے. اور کسی کو علم نہیں یقین نہیں ہے تو پھر وہ کھاتا. تو ہمارے جو عالم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر گناہوں کے جو نقصانات ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں, اس کو یقین دل میں اتر جاتا ہے کہ گناہ کے نقصانات ہیں. اور یہ میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا, یہ ایک اصول ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم میں جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے زندگی کے اندر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جہاں پریشانی آتی ہے, جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت رک جاتی ہے, ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ رکاوٹیں آ گئی ہیں, ہم اپنا ٹٹولیں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں, کہیں نہ کہیں ہم گڑبڑ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں, گناہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ رحمت رکھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے پریشانی ہے. حقیقت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص نے پریشان کر دیا, فلاں نے پریشان کر دیا. کسی نے کسی کو پریشان نہیں کیا, ہمارے گناہوں نے ہمیں پریشان کر دیا. گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, زندگی پہ مصیبت بن جاتی ہے, پریشانیاں آتی ہیں. یہ یقین ہمارے دلوں میں نہیں ہے. جس دن یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے اس دن پر انسان گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. لہذا یہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کا ڈر, یہ بڑی نعمت ہے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو پھر وہ گناہوں سے بچے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں باقاعدہ دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ڈر کو, اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مانگا کرو, اپنی دعاؤں میں مانگا کرو. اللہم انی اسألوکا خشیتکا فی الغیب والشہادہ, کہ اللہ مجھے آپ اپنی خشیت عطا فرما دیں جب میں لوگوں کے درمیان ہوں اس وقت بھی, اور جب میں اکیلے تنہائی میں ہوں اللہ اس وقت بھی مجھے اپنی خشیت عطا فرما دیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک, کہ اللہ آپ مجھے اپنی ایسی خشیت, اپنا ایسا خوف ڈر عطا فرما دیں جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایک آڑ بن جائے, ایک بیریئر بن جائے, مجھے گناہوں سے گرنے میں رکوا دے. ہمارے مشائخ نے بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں, کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں, دو نعمتیں ہیں جو بہت اہم ہیں, ایک اللہ تعالی کا ڈر اور ایک اللہ تعالی کا در. بات کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا کہ ایک اللہ تعالی کا ڈر ہے, کہ جس کو اللہ تعالی کا ڈر ملے تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے, پھر انسان گناہوں کی طرف نہیں بڑھتا. اور جس کو اللہ تعالی کا در, در دروازے کو کہتے ہیں, جس کو اللہ تعالی کا در مل گیا, در پہ مانگنے کا طریقہ مل گیا, پھر اس کو اللہ تعالی عبادت کی لذت بھی عطا کرتے ہیں, عبادت کے اندر مٹھاس اور حلاوت بھی عطا فرماتے ہیں. اور یہی تو دو چیزیں کہ گناہوں سے بچنا اور عبادت کو شوق اور ذوق کے ساتھ کرنا. تو یہ دو بڑی اہم نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے. مانگنے والے نے تو بہت کچھ مانگا, لیکن اگر کسی کو یہ دو نعمتیں مل جائیں نا, اللہ تعالیٰ کا ڈر مل گیا تو گناہوں سے بچ گیا, اور اللہ تعالیٰ کا ڈر مل گیا تو عبادت بھی مل گئی, باقی سارے کام بھی مل گئے, باقی کام بھی سارے حل ہو گئے. تو یہ دو نعمتیں جس کو مل گئیں, سمجھے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں. ہم اپنے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ مجھے اپنا ڈر بھی عطا فرما, اپنا در بھی عطا فرما. تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, اور جب دل میں اللہ تعالی کا ڈر ہوگا, خوف ہوگا, تو گناہوں سے بچنا پھر آسان ہو جاتا ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک تابعی تھے حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ, وہ اپنے دوست کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, راستے میں انہوں نے خیمہ لگایا اور دوست کو کہا کہ آپ کچھ لے کے آ جائیں کھانے پینے کے لیے. اب وہ تن خیمے کے اندر ہیں اور اکیلے ہیں, تو قریبی سے ایک عورت تھی, بیڈوین وومن, وہ گزرتی ہے خیمے سے اور دیکھتی ہے کہ اکیلے ہیں, تو وہ خیمے میں داخل ہو جاتی ہے. اب وہ عورت ان کو اشارہ کرتی ہے, اپنے پاس بلاتی ہے, تو سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بھوکی ہے, کچھ کھانا چاہیے. تو انہوں نے جو کچھ تھا کچھ نکال کے دینے کی کوشش کری, تو اس عورت نے اشارہ کیا کہ نہیں, مجھے بھوک نہیں لگی, مجھے تو وہ چاہیے جو ایک عورت کو اپنے شوہر سے چاہیے ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ الفاظ سنا نا, تو رونا شروع ہو گئے کہ یا اللہ, شیطان کو ابھی بھی مجھ سے امید لگی ہے کہ مجھ سے گناہ کروانا چاہتا ہے. اور اتنا روئے اتنا روئے کہ وہ جو عورت تھی وہ بھی بیچاری, اس کو شرم آنے لگی, وہ چلی گئی. تو رات میں جب سوتے ہیں تو ان کو خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے. تو وہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ زلیخا نے آپ کی طرف آنے کی کوشش کی, گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے فرمایا معاذ اللہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس پہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا نبی تھا, میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی, لیکن جو آپ نے کام کیا, آپ نے تو ولی ہو کے وہ کام کر دیا جو نبیوں کا کام ہوتا تھا. تو واقعی کہ یہ جو بڑا کام ہے, ایسا کام ابھی بھی لوگ موجود ہیں, اس امت کے اندر لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے بچاتے ہیں, بچا کر دکھاتے ہیں, اور وہ کام کرتے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا. ایسے بھی لوگ موجود ہیں اسی امت کے اندر. جب دل میں اللہ تعالی کا ڈر آ جاتا ہے تو پھر انسان چاہے تنہائی میں ہونا اپنا آپ کو بچاتا ہے. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ کمرے کے اندر اگر کوئی 5 سال کا بچہ ہو, 5 years old, تو ہم we feel embarrassed, और हम वो गुनाह नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज देखने वाली है, हम नहीं देखेंगे कि भाई 5 साल का बच्चा है। हमें 5 साल के बच्चे का डर तो है, लेकिन अल्लाह ताला का डर नहीं है। अल्लाह ताला देख रहे होते हैं, लेकिन इंसान गुनाह कर रहा होता है। ताबीन में एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अता इब्ने रबा रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने दोस्तों को एक जुमला कहते थे कि मेरे दोस्त अपने शागिर्दों को कि जब कोई गुनाह करता है तुम सारे कर्टनों को बंद कर देते हो, दरवाजे को लॉक कर देते हो, खिड़कियां बंद कर देते हो, सारे वो दरवाजे जहां से मखलूक देख सकती है बंद कर देते हो, ये बताओ कि जिस दरवाजे से तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें देख रहा है उस दरवाजे को क्यों नहीं बंद करता। वो दरवाजा खुला होता है, अल्लाह ताला देख रहे होता है। हमें लोगों से शर्म आती है, लेकिन जिस दरवाजे से अल्लाह ताला देख रहे होते हैं उस दरवाजे को तो हम कम दर्जा दे रहे होते हैं, कम अहमियत दे रहे होते हैं, उसकी कम फिक्र होती है। जब दिल में ये खौफ आ जाए ना कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो फिर गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। फिर इंसान कोशिश भी करता है, अल्लाह ताला की मदद भी होती है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ मेरे ऐसे बंदे हैं, इबादी लैसा लका अलैहिम शैतान, कि मेरे कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिन पे शैतान का दाव चलता ही नहीं है। ये क्या बात है, जब इंसान मेहनत करता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है, फिर अल्लाह ताला बचाता है, फिर शैतान का दाव नहीं चलता। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की बहुत नेक बंदी थी, वो अजीब अल्लाह ताला से राज़ो नियाज की दुआएं करती थी। तो एक रात में तहज्जुद में उठती थी, अब एक दुआ तो यही करती थी कि या अल्लाह, जो दुनिया के बादशाह हैं उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, या अल्लाह आप शहनशाह हैं, आपका दरवाजा अभी भी खुला है, अल्लाह आपकी एक फकीर बंदी दामन फैलाए आपके सामने बैठी है, अल्लाह अपनी रहमत से मेरे दामन को भर दीजिए। क्या मोहब्बत से दुआएं मांगती थी तहज्जुद के वक्त में। और फिर एक दूसरी दुआ करती थी कि या अल्लाह, जिस तरह आपने आसमान को जमीन पर गिरने से रोक दिया, अल्लाह गुनाहों को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दीजिए। दिल में फिक्र थी, लिहाजा पे दुआएं मांगती थी। जब इंसान इस तरह दुआएं मांगता है ना कि या अल्लाह मेरे लिए गुनाहों से बचना मुश्किल है, अल्लाह आप मेरे मालिक हैं, आपके लिए मुझे गुनाहों से बचा देना तो आसान है, अल्लाह आप मुझे गुनाहों से बचा लें, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं, फिर अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमा देता है, अल्लाह ताला हिफाजत करता है। हम अपने आप को पेश करके तो देखें, पेश करके देखें। गुनाह को कभी छोटा ना समझें। हाफिज इब्ने कय्यिम अल-जौज़िया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुनाह को जब इंसान छोटा समझता है वो फिर छोटा नहीं रहता, वो बड़ा हो जाता है। फरमाते थे कि ये ना देखो कि ये गुनाह छोटा है या बड़ा है, बल्कि ये देखो कि किस जात के खिलाफ तुम ये गुनाह कर रहे हो, किसकी नाफरमानी कर रहे हो, उनकी अजमत का सोचो। गुनाह छोटे नहीं होते, जबकि इंसान पे इसरार करता रहे तो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो गुनाहों को छोड़ना, गुनाहों से तौबा करना, ये हमारा मकसद है। और तसव्वुफ और सुलूक का मकसद भी यही है। आज लोगों ने तसव्वुफ को पता नहीं क्या बना लिया है, हालांकि उसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इंसान गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारे। हमारे बुजुर्ग सुलेमान नबी रहमतुल्लाह अलैह وہ ایک دفعہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے, پوچھا کہ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے, تصوف کیا بلا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ زندگی سے ریشے ریشے سے, رگ رگ سے, روئے روئے سے گناہ کا نکل جانا یہ مقصد ہے. تصوف کا مقصد یہ ہے, یہی ہے کہ انسان کی زندگی سے رگ رگ سے, روئے روئے سے, ریشے ریشے سے گناہ کی نجاست نکل جائے, گناہ نکل جائے, گناہ چھوٹ جائے, گناہ ختم ہو جائے, یہ مقصد ہے. ویسے کچھ لوگ علم پڑھ رہے ہیں, ہمارے ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ سوال کہ حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے, بالغ بلوغت, تو انہوں نے آگے سے کہا یہ بتاؤ کہ شریعت میں بالغ کب ہوتا ہے یا تصوف میں بالغ کب ہوتا ہے, شریعت میں بالغ کب ہوتا ہے یا طریقت میں بالغ کب ہوتا ہے, حضرت دونوں ہی بتا دیں. تو ہم نے کہا بات کھولنی ہے تو کھولنی پڑے گی سمجھانے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب انسان کے جسم سے منی نکلتا ہے, منی کہتے ہیں انسان کو, وہ ڈریم آتا ہے تو جو ڈسچارج ہوتا ہے, جب انسان کے جسم سے منی نکلتا ہے تو وہ شریعت میں بالغ ہو جاتا ہے, اور جب منی انسان سے نکل جاتا ہے تو وہ طریقت میں بالغ ہو جاتا ہے. کہ جب انسان شہوت ختم ہو جاتی ہے, جو شیطانی شیوانی وساوس ختم ہو جاتے ہیں, اب وہ طریقت میں بالغ ہو گیا. جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں نا, اب وہ طریقت میں بالغ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا مقصد ہے. ابھی جو ہم ہیں نا, بچوں کی زندگی گزار رہے ہیں, بچے ہیں, بالغ ہی نہیں ہیں. جب تک گناہوں کے ساتھ ہے نا بالغ, اب تو بچے ہیں ابھی تک. اندازہ لگائیں کہ ہم 30 سال کے ہو جائیں, 40 سال کے ہو جائیں, اور چھوٹے بچوں کی طرح 5 سال کے بچوں کی حرکتیں کر رہے ہوں, تو لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو. ہم ہیں تو 30 سال کے, 25 سال کے, 40 سال کے, لیکن دین کے اعتبار سے ابھی ہم چھوٹے 5 سال کے بچے کی طرح, بالغ بھی بالغ بھی نہیں ہوئے, چھوٹے بچوں کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو عمر اتنی ہو گئی ہماری ظاہر میں, لیکن حقیقت میں ابھی تک بچے کے بچے ہی ہیں ہم لوگ, روحانی طور پہ بالغ ہوئی نہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لیں, گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں, محنت شروع کریں. ایک عام مشاہدہ ہے کہ جو دیندار بھی لوگ ہوتے ہیں نا, ہم نے امامہ پہن لیا, ٹوپی پہن لی, جبا پہن لیا, دین کی کچھ نہ کچھ خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو دین کا جو خلیہ ہے نا, اس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے تو انسان بچ جاتا ہے. یہ برکت ہے. اب کسی نے امامہ جبا پہنا ہوا ہو, اس کو شرم آئے گی کہ بھائی یہ گناہ تو میں کم از کم نہ کروں گا. یہ برکت ہے سنت کی, دین کی, حلیے کی, ظاہر کی, کہ بہت سارے گناہوں سے انسان بس اپنے حلیے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں کہ بھائی شرم آئے گی مجھے, مجھے تو کم از کم نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی چند ایک دو تین چار گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کر رہا ہوتا ہے, کسی کی نہیں, آنکھ قابو میں نہیں ہوتی, آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ہیں دیندار, تہجد بھی پڑھ رہے, تلاوت بھی کر رہے, لیکن آنکھ قابو میں نہیں ہے. اب اس کی وجہ سے وہ رکاوٹ ہے उनको मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, वसल नसीब नहीं होता। किसी के लिए जबान का मसला होता है कि हैं बहुत दीनदार, नेकोकार, परहेजगार, तहज्जुद गुजार, लेकिन अपने घर वालों के साथ और रिश्तेदारों के साथ अखलाक अच्छे नहीं है, जबान अच्छी नहीं है, ऐसी बातें कर देते हैं, लोगों का दिल दुख जाता है, कड़वी बातें, रिबत हो गई, बोतान हो गया, तो जबान काबू में नहीं, किसी की कोई शर्मगाह काबू में नहीं। कोई ना कोई ऐसा गुनाह जरूर होता है जिसकी वजह से इंसान रुका हुआ होता है। अक्सर बेशतर रुकावट उन तीन चार गुनाहों की वजह से हो रही होती है, वो परवाज नहीं हो रही होती, रस्सी होती है गुनाह, पुल अ पर्सन बैक, खींच लेते हैं वापस। वो एक दो तीन चार गुनाह होते हैं, उनको छोड़ना मुश्किल हो रहा होता है, और उसकी वजह से फिर इंसान नूर से महरूम रहता है, कबूलियत से महरूम रहता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत से महरूम रहता है, विलायत से महरूम रहता है। तो उन गुनाहों को जो रह गए हैं उनको इंसान हिम्मत करे, कोशिश करे, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला आसानियां फरमा देता है। चंद कदम रह गए, मंजिल सामने है, और इंसान अगर रास्ते के अंदर ही थक हार के नीचे गिर जाए तो उस शख्स के बारे में हसरत करेंगे ना कि उसको फिनिश लाइन नजर आ रही है, एंड नजर आ रहा है, लेकिन वो चंद कदम पहले गिर गया, हार मान ली, फिनिश लाइन सामने। चार पांच गुना होते हैं हर बंदे के अपने, कुछ फिनिश लाइन सामने, उन गुनाहों को छोड़ दें, वो जो चंद कदम रह गए हैं ना उनको भी उठा लें, फिर देखें कितनी बरकतें खुल जाती हैं, अल्लाह ताला जिंदगी के अंदर बरकतें अता फरमा देंगे। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कुरान में अल्लाह ताला ने उसूल बयान फरमा दिया है कि अगर बरकतें चाहते हैं तो वो जो चंद कदम है वो ले लो, गुनाहों को छोड़ दो। वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, कि बस अगर ये बस्ती देसी वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार कर लेते, गुनाहों को छोड़ देते, तो हम बरकतों के दरवाजे खोल देते, ऊपर से भी नीचे से भी देते। अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता करते, वक्त में बरकत, सेहत में बरकत, फैसलों में बरकत, कदम कदम पे बरकतें होंगी, जिंदगी पर एक छोटा सा जन्नत का नमूना बन जाएगी, बरकतों वाली जिंदगी होगी, हयातन तय्यबा, तय्यब जिंदगी होगी, पाकीज़ा जिंदगी होगी जब गुनाह छूट जाएंगे। तो देखें चंद कदमों की बात है, वो चंद कदम ले लें और फिर अल्लाह ताला देखें कितना देना चाहते हैं, कितना अता करना चाहते हैं। और वो दुनिया में भी यही उसूल है कि पहले अपने आप को पाक करना होता है, फिर अल्लाह ताला अता करते हैं। पहले कहते ना साफ करो, हम जिस्म साफ करते हैं, फिर नया लिबास पहनते हैं, फिर उसमें खुशबू लगाते हैं। तो अगर अल्लाह ताला के कुर्ब की खुशबू चाहते हैं, पहले अपने जिस्म को साफ कर लें, अपने गुनाहों से अपने आप को पाक कर लें। हमें याद है कि एक दफा हमारे अपने शेख अजहर जी बयान फरमा रहे थे, कि मैं मिस्कीन बूथ शरीफ गया था, चार महीने वहां मैंने जिक्र सीखने के लिए, तो कहते वहां पुरानी 1970s की बात है, और उस वक्त थे भी जो मदरसा खानका जो थी वो बहुत ही बेसिक कंडीशन थी। कहते वहां गए तो वहां वॉशरूम बने हुए थे ना, तो वॉशरूम के अंदर जो दीवार थी वो बहुत छोटी सी दीवार थी, तो लोग जाते थे, कभी अंदर वाला होता था वो पानी बाहर फेंक देता था, कभी बाहर वाले होते थे वो पत्थर अंदर फेंक देते थे, तो लोगों को तकलीफ होती थी। तो किसी ने मशवरा दिया कि हजरत ये जो वॉशरूम की दीवार है ना, इनको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऊंचा कर देते हैं। देखा ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, वो ईंटें डाली, सीमेंट डाली और दीवार को थोड़ा बड़ा कर दिया। अब बड़ी तो हो गई दीवार, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि लोगों ने थोड़ा सा दीवार पे हाथ रखा तो देखा कि ये तो दीवार हिल रही है, फिर बुलाए कि देखे तो दीवार हिल रही है। तो एक बंदा आया, उसने जरा दीवार को देखा, हिलाने की कोशिश करी, पचला कोशिश क्या करी, वो दीवार ही नीचे गिर गई, जो बनाई थी ना वो नीचे गिर गई। तो हाजी जी हमारे फरमाते हैं कि मुझे बुलाया, क्योंकि मैं थोड़ा इंजीनियर था, तो कहा कि ये क्या बात है, ये क्यों नहीं है, गिर गई, अभी तो बनाई थी। कहते मैंने देखी, मैं मामले को समझ गया कि जो दीवार बनाई थी ना, एक पुरानी थी दीवार और उसके ऊपर उन्होंने एक और दीवार बनाई थी, लेकिन दरमियान के अंदर उन्होंने जो जोड़ था ना, वो जोड़ सही नहीं दिया था, बीच में कचरा था, मिट्टी थी, इम्प्योरिटीज थी, जिसकी वजह से जो जोड़ था ना वो पक्का नहीं बना था। तो मैंने कहा कि देखें, इसका जोड़ देने का तरीका ये है कि पहले एक इसको फ्लैट करें, जो पुरानी दीवार है ना उसके ऊपर के हिस्सों को साफ करें। तो हमने पहले उसको साफ किया, मैल वैल दूर किया, फिर उसके ऊपर वही ईंटें लगाई, गाढ़ा बनाया और उसको करते करते ऊंचा लेके ऊंचा लेते चले गए। अब जब वो दीवार बनाई तो वो पक्की थी। तो फिर किसी ने पूछा कि हजरत ये हमें बात समझ में नहीं आई कि पहले जो दीवार बनी थी वो भी तरीका तो यही था, लेकिन वो कमजोर टूट गई, आपने जो दीवार बनाई है ये पक्की बात, ये पक्की है, क्या वजह है? तो उन्होंने फरमाया कि देखो, पहले जो दीवार थी ना उसमें बीच के अंदर मेल था और मेल की वजह से जोड़ नहीं बैठ रहा था। तो हमने पहले मेल को हटाया, मिट्टी को हटाया, और जो ही मिट्टी को हटाया अब जोड़ बैठ गया, अब जोड़ बन गया और ये पक्का हो गया काम। फिर हमारे अजी फरमाते थे कि ये तो पुरानी बात है, बचपन की बात है, 1970s की। कहते अब मैं उस वाक्य को सोचता हूं ना तो मुझे ख्याल आता है कि अल्लाह ताला के साथ भी यही मामला है कि हम अल्लाह ताला के साथ जुड़ना चाहते हैं लेकिन दिलों पे मिट्टी है, गुनाहों की मिट्टी है, गुनाहों की मिट्टी के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, हम जुड़ते हैं अगले दिन ही गिर जाते हैं, हम जुड़ते हैं अगले लम्हे ही गिर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी है ना, वो जोड़ बैठ ही नहीं रहा। लेकिन जिस दिन ये मिट्टी को हटा देंगे, ये नजासत को हटा देंगे, ये गुनाहों को हटा देंगे, फिर जो जोड़ बनेगा ना वो पक्का होगा, फिर वो बुनियाद ऐसी होगी कि उस पर पूरी इमारत खड़ी कर देते। तो बात तो सादा सी है लेकिन समझ में आने वाली बात है कि अल्लाह ताला के साथ अगर हमें जोड़ चाहिए तो गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला पाक जात है, पाक जात के साथ नापाक चीज मिल नहीं सकती। गुनाह नापाकी है, गुनाह नजासत है। देखें, शरीयत के अंदर दो किस्म के नजासत होते हैं ना, एक होती है नजासत हकीकी, ये तो आप लोगों को पता है, राइट? जो हम वॉशरूम के अंदर कर उसको नजासत हकीकी कहते हैं। और एक चीज होती है नजासत हुक्मी, नजासत के हुक्म में होती है। मिसाल के तौर पे मदर इज अ वुमन, जो उनके खास दिन होते हैं, अब उन दिनों के अंदर वो नमाज नहीं पढ़ते। अब देखें, पाक हैं, साफ हैं, मेकअप भी किया हुआ है, खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन शरीयत के हुक्म में, शरीयत की नजर में वो नजस है। शरीयत के हुक्म में तभी भी नमाज नहीं पढ़नी जब तक पाक ना हो जाए। इसी तरीके से मुशरिकीन को देखें, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं नजस है, हुक्मन नजस है। बिल्कुल इसी तरीके से जो गुनाह होते हैं ना, ये हमें नजर तो नहीं आ रहे होते लेकिन ये इंसान को हुक्मन नजस बना देता, ये नजासत हुक्मी है। हमने अपनी आंखों से गुनाह किया, हम यूं सोचें कि मेरी आंख अब नजस हो गई है। मैंने जबान से गुनाह किया, मेरी जबान अब नजस हो गई है। हाथ से, पैर से गुनाह किया, मेरे हाथ और पैर अब नजिस हो चुके हैं। मुंह से गुनाह किया, जबान से गुनाह किया, अब मुंह मेरा नजिस हो चुका है। अब हम सोचें, लगता तो यह कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक हम नजिस हैं। अब हमें अपने आप को पाक करने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है। तो हमारे यही वजह, हमारे जो अकाबिर तो बड़ा ख्याल करते थे, उनको इस बात का एहसास था कि हमारा वो आंखें नजिस हो जाएंगी। वो घर से वजू करके निकलते थे मस्जिद जाने की तरफ, और अगर रास्ते में किसी ऐसी चीज को देख लेते थे जो नहीं देखनी चाहिए थी, तो फिर वो मस्जिद पहुंच के दोबारा वजू करते थे कि भाई आंखें नजिस हो गई हमारी, अब दोबारा वजू करो। फिर दोबारा वहां पहुंच के वजू करते थे, फिर नमाज पढ़ते थे। तो इस नजासत हुक्मी को दूर करने का नाम है तौबा। नजासत को दूर करने का नाम है तौबा, और ये तौबा अल्लाह ताला को पसंद है कि जो इंसान सच्चे दिल के साथ तौबा करता है तो अल्लाह ताला फिर इस नजासत को दूर फरमा देते हैं। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, कि गुनाहों से तौबा करने वाले ऐसे ही होते जैसे गुनाह किया ही ना हो। देखिए कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, कि जिसने अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं जो गुनाहों को छोड़ देता है। युहिब्बुल मुतताहिरीन, जो नजासत हुक्मी को भी छोड़ दे और नजासत हकीकी को भी छोड़ दे, अल्लाह ताला दोनों से मोहब्बत करते। मुतताहिरीन, के हकीकी नजासत ना हो, तवाबीन हुक्मी नजासत भी ना, गुनाह भी ना। तो दोनों नजासतों को छोड़ते हैं, अल्लाह ताला की महबूबियत मिल जाती है, अल्लाह ताला का कुर्ब मिल जाता है। हम कोशिश करें, मुझे याद है हमने ये जुमला अपने अजीज से कई दफा सुना है कि जो शख्स अपने इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, जो शख्स अपने इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की दुआओं को रद्द करना छोड़ देता है। ये पक्की बात है, ये 100% पक्की बात है कि जो शख्स अपने इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को रद्द करना छोड़ देता है। क्योंकि अगर ला इल्मी में कोई गुनाह हो गए ना, या बगैर इरादे के गुनाह हो गए, तो अल्लाह ताला ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं कि देखो ये बंदा गुनाह करना नहीं चाहता था, हो गया, इल्म नहीं था, जहालत में कर दिया, तो अल्लाह ताला फिर उस बंदे की जल्दी मगफरत फरमा देता है, माफ फरमा देता है। जो असल मसला है ना, वो इल्म और इरादे के साथ जब इंसान गुनाह करता है वो पकड़ आती है। तो इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ दे, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि अब इंसान फरिश्ता बन गया, नहीं, इंसान इंसान रहता है, हो सकता है बतकाज़ा बशरियत कोई गुनाह हो जाए। अब जब गुनाह हो जाए तो इंसान पे तौबा कर ले, तौबा कर ले, अल्लाह ताला से माफी मांग ले, और अपने तौर पे खूब कोशिश करता रहे कि जिस हद तक मुझसे पॉसिबल है मैं गुनाह से अपने आप को बचाता रहूंगा। तो अल्लाह ताला उस गुनाह की हालत में रहने नहीं देता, अल्लाह ताला बचा लेता है, अल्लाह ताला बचा लेता है। यही वजह है कि इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हमारी उम्मत के अंदर ऐसे कितने लोग हैं कि 20 साल 30 साल गुजर जाते हैं और गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को कुछ लिखने का मौका ही नहीं मिलता। ये क्या होता है कि ये लोग होते हैं जो इल्म और इरादे से गुनाह नहीं कर रहे होते, और अगर कभी गुनाह बिलफर्ज भूल के हो किया तो फौरन तौबा कर लेते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को लिखने का मौका ही नहीं देते। क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि फौरन गुनाह नहीं लिखे जाते, अल्लाह ताला मोहलत देते हैं कि अगर तौबा कर ले तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो लिहाजा हम भी अगर ऐसा कर लें तो तो हमारा भी नाम शामिल हो जाएगा। तरीका बहुत आसान है, इंसान नियत कर ले कि इल्म और इरादे से मुझे गुनाह नहीं करने, और अगर कभी भूल के गुनाह हो गए तो फौरन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इंसान तौबा कर ले कि अल्लाह गलती हो गई या अल्लाह आइंदा नहीं होगी, इंसान इस ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएगा। जब इंसान, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि तीन काम ऐसे हैं जिसपे अल्लाह ताला की खुसूसी मदद शामिल हाल है, अल्लाह ताला की खास मदद मिलती है तीन कामों पे। एक तो ये कि अगर कोई नेक नियति के साथ मस्जिद बनाने का इरादा करे, अब फंड्स नहीं है लेकिन अगर नेक नियत है तो अल्लाह ताला अस्बाब पैदा फरमा देते हैं, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से फंड्स दे देंगे, मस्जिद तामीर हो जाएगी, अल्लाह ताला की खास मदद होती है। दूसरा नुक्ता फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हो जो अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हो और उसके पास वसाइल ना हो या ऐसा मामला ना हो लेकिन नेक नियत हो, नेक नियति के साथ वो काम आगे बढ़ाता है, तारीख रख देता है, मामले को आगे लेके जाता है, अल्लाह ताला कभी रुसवाई नहीं फरमाते, अल्लाह ताला पुश्त पनाही फरमाता, अल्लाह ताला की पुश्त पनाही होती है, अल्लाह ताला की रहमतों की ठंडी छांव होती है, अल्लाह ताला की खास मदद होती है। और तीसरा कि जो बंदा अपने दिल में गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा का इरादा कर ले तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को भी अपनी खास मदद और नुसरत अता फरमा देते। हमारा मसला यह है कि हम वो सच्ची और पक्की तौबा नहीं करते, हम कच्ची तौबा करते, हमारी तौबा कच्ची होती है, यहां तौबा कर रहे होते हैं वहां दिल में इरादा होता है अभी तो मुझे और भी काम करने, यहां तौबा हो रही होती है लेकिन दिल के अंदर पता होता है कि यहां से निकलना है तो मुझे कहीं और भी जाना है, ये दिन खत्म होगा तो अगला दिन शुरू हो जाएगा फिर मुझे वापस। तो तौबा जो हमारी है ना वो पक्की नहीं है, इस वजह से मदद नहीं है। जब तौबा पक्की, देखें वैसे भी कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तज़किया होगा ना वो तो अल्लाह ताला की तरफ से होगा, अल्लाह ताला की मदद के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, कि अगर अल्लाह ताला का फजल ना हो और अल्लाह ताला की रहमत ना हो तो मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो तुम में से किसी शख्स का भी तज़किया नहीं हो सकता। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, लेकिन जब अल्लाह ताला चाहे जिस के लिए चाहे अल्लाह ताला उस शख्स का तज़किया फरमा देते। तो तज़किया तो अल्लाह ताला की रहमत की वजह से होगा बल्कि अल्लाह ताला की एक नीम रहमत की नजर पड़ जाएगी उसी से हमारा तज़किया हो जाएगा। तज़किया हम कोशिश तो करेंगे, मेहनत भी करेंगे लेकिन अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकता, अल्लाह ताला की मदद चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत चाहिए। मैं बात को समेटता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है हम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें। हमारे अपने सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत आलिम दीन थे, बड़े मशायख में उनका नाम आता है। वो फरमाते थे कि मुझे अल्लाह ताला ने इहयाए सुन्नत के लिए भेजा है, कहते कि अल्लाह मैं चाहता तो बहुत शागिर्द होते मेरे लेकिन मेरा मकसद शागिर्द नहीं है, शागिर्द बनाना नहीं है, मेरा मकसद तो अल्लाह ताला ने सुन्नतों को जिंदा करना है इसलिए भेजा है। उनकी बात है, वो फरमाते थे कि अजीब बात कि जिसने अपने जिंदगी का कोई एक दिन ऐसा गुजारा हो कि जिसमें उसने गुनाह ना किया हो, एक दिन गुनाहों के बगैर उसने गुजारा हो, गोया ऐसा है कि उसने वो दिन नबी अलैहिस्सलाम की सोबत में गुजारा है। अल्लाह अकबर। नजर लगाए कि जो दिन इंसान गुनाहों से खाली गुजारता है तो ये ऐसे ही है जैसे उसने नबी अलैहिस्सलाम की सोबत में दिन गुजारा। तो हम भी नियत कर लें कि या अल्लाह हमारी जिंदगी का कोई दिन तो ऐसा हो, कोई तो ऐसी सुबह उठें तो हम ये नियत करें कि या अल्लाह आज के दिन जो है, या अल्लाह ये जो मेरा दिन है ऐसा बना दें कि आपके हुक्मों के खिलाफ मैं कुछ ना करूं। सुबह उठे ना तो ये नियत कर लें कि या अल्लाह आज का जो दिन शुरू हो रहा है अल्लाह ऐसा दिन मेरे लिए बना दें कि अल्लाह आपके हुक्मों को मैं तोड़ू नहीं, मैं किसी तरीके से भी तोड़ू नहीं, मैं कोशिश करूंगा या अल्लाह आप आसानी फरमा दें, मैं कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, अल्लाह आज आप मेरे लिए आसानी कर दें, मेहरबानी फरमा दें, रहमत अता फरमा दें। ये जो नदामत के आंसू होते हैं ना, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद होते हैं। देखें किसी को बुलाना होता है ना, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है उसका नाम लो, भाई फला आ जाओ, और दूसरे ये होता है कि उसके दरवाजे को जाके नॉक करते रहो, दस्तक दो। तो ये जो दस्तक देना है ना, जब इंसान की आंखों से निदामत के आंसू गिरते हैं ना, ये अल्लाह ताला के अर्श पे दस्तक दे रहे होते हैं। एक एक आंसू गिर रहा होता है, अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा खटखटा रहे होता है, अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा खुल जाता है। तो ये निदामत के आंसू बड़े नेमत है, अल्लाह ताला इनकी वजह से तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। हम तो गुनाह करते हैं, गुनाह नहीं छोड़ पाते, गुनाह छोड़ना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए हमारे लिए गुनाहों को छुड़वा देना आसान है। हमारे लिए मुश्किल है, अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं है। हम अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पेश करें कि या अल्लाह, हर कमजोर कवि को पुकारता है, अल्लाह हम कमजोर हैं, हम आपको पुकारते हैं, या अल्लाह आप हमें नफ्स और शैतान से छुटकारा अता कर दें, गुनाहों से पाक जिंदगी अता फरमा दें। और वैसे भी हमने देखा है कि घर में अगर किसी की औलाद हो तो औलाद में जो सबसे कमजोर बच्चा होता है ना, उस पर माँ बाप की शफ़क़त सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कमजोर है। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह आपकी उम्मत में सबसे कमजोर तो अल्लाह हम ही हैं, अल्लाह अपनी रहमत की जो खास नजर है अल्लाह हमें अता कर दें, और हमें गुनाहों से अल्लाह बचा लें। गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान बना दें, और हमें गुनाहों से बचकर अल्लाह अपनी रजा वाली और तकवा वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। वा आखिरु दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।